परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर्ष श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की श्रीमद भगवद गीता की श्री गीता जयंती महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयहं कदापि स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस शुभ अवसर गीता जयंती के अवसर पे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के चार प्रमुख श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे श्री महाभारत के आधार पर। तो आप जानते हैं कि जो भगवद गीता है ये 700 श्लोक महाभारत के 100,000 जो है 100,000 श्लोक है उनमें से 700 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है और यह आता है भीष्म पर्व में। तो एक तरह से देखा जाए तो महाभारत में इतना तत्वज्ञान नहीं है, महाभारत में प्रधान रूप से लीलाएं हैं, पर जो बड़ा आसमान होता है आसमान में एक चांद या एक सूरज चमकता है पूरे आसमान का वो उजागर कर देता है। वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता अगर हम उसके श्लोकों की संख्या से देखेंगे तो छोटी है महाभारत के विस्तारित स्वरूप के तुलना में, पर यह जो भगवद गीता है संपूर्ण महाभारत जो कि इतना विशाल है कि एक आसमान के समान है, वो जो महाभारत है विश्व की सबसे बड़ी कविता है। इतनी बड़ी कविता विश्व के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई है। जो पाश्चात्य संस्कृति में इलियड और ओडिसी नाम के दो बड़े विशाल कविताएं थे, ये दोनों को मिला के अगर आप 7 गुना उसको बड़ा करेंगे फिर भी वो महाभारत से कम होता है। तो महाभारत इतनी बड़ी कविता है तो वो आसमान के समान है, पर ये सारे आसमान को उजागर करते हैं भगवद गीता। तो हम आज देखेंगे कि कैसे जो भगवद गीता सिखा रही है तत्व ज्ञान वह श्री महाभारत में किस तरह से प्रसंगों से दर्शाया गया है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ये एक महान वैष्णवाचार्य है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको विशिष्ट अद्वैत वाद कहते हैं, और उन्होंने बताया है कि श्रीमद् भगवद गीता के जो 10वें अध्याय के 4 श्लोक हैं, 8 से 11, इसको चतुश्लोकी भगवद गीता कहते हैं। और ये चतुश्लोकी भगवद गीता जो है, यह सारे भगवद गीता का एक तरह से सार है, और इसीलिए उसी विश्लेषण को हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये जो आचार्य है जिन्होंने भगवद गीता पर टिप्पणी लिखी है, वो भी उसको दोहराते हैं। तो हम देखेंगे आज के प्रवचन में किस ये 4 श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, और हम चर्चा देखेंगे किस तरह से ये 4 श्लोक भगवद्गीता का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, और साथ साथ कैसे उसको महाभारत में दर्शाया गया है। तो भगवद्गीता के जो 700 श्लोक है, उसमें से अधिकांश लोग जो है कृष्ण बोलते हैं, और अधिकांश रूप से जब अर्जुन बोलते हैं भगवद्गीता में, वो सवाल पूछने के लिए है। तो पूरी भगवद्गीता में एक ही जगह है जहां पे अर्जुन अपनी समझ बताते हैं। मतलब अभी मान लीजिए हम कोई प्रवचन में जा रहे हैं, तो जो वक्ता है प्रवचन देते हैं, और उसके बाद में जो श्रोतागण है अगर वो बताते हैं कि मैं ये समझा, तो फिर हम समझ सकते हैं उससे कि श्रोतागण कितना, वो श्रोता जो है वो कितना समझ पाया है और क्या उसको समझ में नहीं आया है। तो अर्जुन जो भगवद गीता के अंत में है, 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में, वो अपना निष्कर्ष एक व्यवहारिक रूप से बताते हैं। व्यवहारिक रूप से मतलब क्या करना है, तो बताते हैं करिष्ये वचनम तवा, कि जो आप बताओगे मैं वह करूंगा। वो अपनी शरणागति व्यक्त करते हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि भगवान आपके उपदेश से मैं सहमत हूं और मैं आपके शरणागत होना चाहता हूं, इसलिए आप जो बोलोगे मैं वह करूंगा। पर वो उपदेश है क्या, वो अर्जुन क्या समझे है, यह हम देखते हैं 12वें 13वें 14वें 15वें श्लोक में। तो ये जो श्लोक है, ये चतुश्लोक की भगवद्गीता के तुरंत बाद आते हैं। तो इसीलिए ये जो 4 श्लोकों का महत्व क्या है, एक तरह से जो 700 श्लोक है उसमें से ये बराबर लगभग बीच में आते हैं। 9 अध्याय है उसके अंत में, 10वें अध्याय के शुरुआत में आते हैं, तो बराबर बीच में है। पर साथ साथ ये श्लोक होने के बाद अर्जुन कोई सवाल नहीं पूछते, सबसे पहले अपनी समझ बताते हैं। और आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान इस तरह से बोलते हैं, सारे भगवद्गीता में हम देखेंगे कि भगवान कुछ बोलते हैं और फिर अगर अर्जुन को संशय है तो वो सवाल पूछते हैं, और साधारणतया अगर संशय नहीं है तो अर्जुन श्रवण करते रहते हैं। पर यहां पे जब 10वें अध्याय के इस जगह पे आते हैं हम, तो अर्जुन कुछ सवाल नहीं पूछते हैं। तो ऐसे बताते हैं आचार्यगण कि जब भगवान 10वें अध्याय का 11वां श्लोक पूरा करते हैं, तो भगवान स्वयं रुक जाते हैं। क्या है, भगवान को लगता है कि अभी मैंने मेरे जो महत्वपूर्ण उपदेश है वो पूरा कर लिया है, और फिर अर्जुन अपनी समझ बोलते हैं, और फिर बाद में अर्जुन कोई संशय नहीं पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आपने जो बताया है मैं कैसे अमल करूं, आपने बताया है कि सदैव आपका स्मरण करूं, तो इस भौतिक जगत में आपका स्मरण कैसे कर सकते हैं। तो उससे वो विभूति योग नाम का जो अध्याय है वह शुरू होता है। तो यहाँ पे 8वां श्लोक है, 8वां, तो कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए। अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, मत्ता सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम, मत्वा भजन्ते माम, बुधा भाव समन्वितः, भाव समन्वितः। तो ये 10वें अध्याय का नाम है विभूति योगा। तो अहम भगवान बता रहे हैं, मैं जो हूं सर्वस्य प्रभवो, तो प्रभव प्रभु इसका अर्थ है स्वामी, पर प्रभव इसका अर्थ है स्रोत। भगवान कहते हैं कि मैं सब चीजों का स्रोत हूं, सब चीजें मुझसे आती है। इस ब्रह्मांड में जो भी दिखता है, हम आंखें अगर आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान जो है अनंत लगता है, पर जहां तक ये आसमान जाता है वो सब चीजें भगवान से आती है, उस सबका स्रोत जो है वह भगवान है। और फिर दूसरे श्लोक में बताते, ऐसे नहीं है कि भगवान ने सब सृष्टि कर दिया और फिर जो सृष्टि हो गई वो भगवान के नियंत्रण के परे चली गई। तो अभी भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान ने सृष्टि कर दी और फिर बाद में भगवान रिटायर हो गए। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, प्रवर्तते मतलब चलना, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही चल रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस पे बहुत सुंदर टिप्पणी दी है, वे बताते हैं कि इसके दो अर्थ है कि जो भौतिक सृष्टि चल रही है वो भगवान की योजना से चल रही है, हर कण कण में, हर अणु अणु में भगवान परमात्मा के रूप में है और उनकी योजना से सब कुछ चल रहा है। ये भौतिक दृष्टि से है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इसका अर्थ क्या है कि जो भी अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग है, जो भी अलग अलग साधनाएं हैं, वह सब साधनाएं चलती है, उनका यश मिलता है भगवान की कृपा के द्वारा। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें भक्ति में भगवान की कृपा चाहिए, हाँ भक्ति मार्ग जो है भगवान की कृपा पे मार्ग निर्भर है, पर अगर ज्ञान मार्ग में कुछ शक्ति है, कर्म मार्ग में कुछ शक्ति है, जो भी आध्यात्मिक पथ है अगर उनमें कुछ शक्ति है, वह मत्तः सर्वम प्रवर्तते, वह मुझसे ही आ रही है। इस भौतिक जगत में भगवान अगर नहीं होते तो ना कुछ होता, और अगर होता भी तो कुछ नहीं चलता। तो अस्तित्व है और अस्तित्व कार्यशील है, ये दोनों भगवान की कृपा से हो रहा है। तो यह तत्व ज्ञान है। तो अगर इति मत्वा, अगर मत्वा मतलब अगर कोई समझता है इसको, तो फिर उससे क्या करता है व्यक्ति, भजन्ते माम, वह मेरा भजन करता है, मेरा भक्त बन जाता है। बुधा भाव समन्विता, तो जो भजन करता है उसके दो लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण बताया गया बुधा, बुधा मतलब वह बुद्धिमान है। जो बुधा शब्द हिंदी या हिंदी मराठी में बुद्धू आता है, उससे बिल्कुल उल्टा है वो। जो बुधा जो है वास्तव में जो बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे, वह भगवान के ही एक अवतार थे और उनको वो, उनका नाम सिद्धार्थ था, उनको बुद्ध नाम दिया गया क्योंकि उस समय जो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता था, बहुत ज्ञानवान होता था, उसको बुद्ध कहते थे। तो बुधा, भगवान बता रहे जो व्यक्ति इस तरह से मेरा भजन करता है वह बुधा है, वह बुद्धिमान है। और वह किस तरह से भजन करता है, भाव समन्विता, वह भावनाओं के साथ सम्मान करता है। ऐसे नहीं है कि रीति रिवाज के रूप में रोज मंदिर, हफ्ते में एक बार मंदिर में आना है, रोज सुबह जाके आरती करनी है, नहीं, भाव समन्विता, वह भावनाओं के साथ सब पूजा करता है भगवान की। तो यह जो श्लोक है, यह चतुश्लोकी भगवद गीता का एक तरह से सार है, और इसी श्लोक का विस्तारण जो है अगले तीन श्लोकों में हुआ है। तो भाव समन्विता, कैसे भावनाओं से भक्ति करता है वह व्यक्ति, वह अगले श्लोक में बताते हैं भगवान, नौवें श्लोक में। और वह व्यक्ति कैसे बुधा बनता है, कैसे बुद्धिमान बनता है, वह दसवें और ग्यारहवें श्लोक में बताते हैं। तो यह जो श्लोक है, एक तरह से अगर चतुश्लोकी भगवीता भगवत संपूर्ण 700 श्लोकों का सार है, तो ये चारों श्लोकों का एक सार जो है ये पहले श्लोक में है। तो इसमें बताया है कि जो भगवान का स्तर क्या है, भगवान का पद क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, और जो यह समझता है वह व्यक्ति क्या करता है। तो जो भगवान के का स्तर है वह समझना, हमें लगता है हम पता, मैं मंदिर में आता हूँ, कृष्ण की पूजा करता हूँ, पर वास्तव में ये इतना आसान नहीं है। जो 108 उपनिषद हैं उनमें से कुछ उपनिषद प्रधान उपनिषद हैं, तो जो 11 उपनिषद प्रधान उपनिषद हैं उनमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है केन उपनिषद, केन। तो वास्तव में केन, ये इसका अर्थ है कौन, केन उपनिषद। तो उसका जो प्रधान, उसमें केन उपनिषद में प्रधान वृत्तांत जो है कि एक बार सब देवतागण जो होते हैं वह गर्वित हो जाते हैं, और सब देवताओं और असुरों में युद्ध होता है, और वो देवता विजयी हो जाते हैं। तो जब विजयी हो जाते हैं तो फिर वो गर्वित होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे कारण विजय प्राप्त किया। एक देवता कहते हैं मैंने विजय प्राप्त किया, दूसरा कहते हैं मैंने विजय प्राप्त किया, तीसरा कहते हैं मैंने विजय प्राप्त किया, मेरे श्रेय से विजय प्राप्त हुआ है। तो जब इस तरह सब गर्व करने लगते हैं, तो तभी अचानक वहां पर एक आकाशवाणी होती है, और वो आकाशवाणी कहती है, वो जो आवाज होता है वो कहते हैं, अगर तुम सब इतना गर्व कर रहे हो तो तुम्हारी शक्ति दर्शाओ।
तो सब देवता कहते हाँ जरूर शक्ति, क्या शक्ति दर्शन है। तो वहां पे ऐसे सब वो बैठे, वहां पे घास का तिनका उड़ते हुए आ जाता है और वो कहते हैं ये घास के तिनके को तुम कुछ कर सकते हो के दिखाओ। तो फिर बोले घास का तिनका क्या बड़ी बात है। तो वायुदेव कहते हैं कि मैं अभी इस घास के, अभी मेरी शक्ति से उड़ के आया है, मैं अभी उसको उड़ाता हूं। तो फिर वो वायु बहने लगती है, अपनी पूरी शक्ति से वायु बहती है, पर वो घास का तिनका है बिल्कुल हिलता नहीं है। वो बाजू में वहां पे पेड़ है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, उसके जो दल है वो टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, पर वो पत्ता, वो जो तिनका है वो हिलता ही नहीं है बिल्कुल। तो वायु पूरी शक्ति लगा देते हैं, फिर थक जाते हैं। फिर अग्निदेव कहते हैं कि मैं ये तिनके को जला दूंगा। और फिर अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण कर देते हैं और वो तिनका है उसके चारों ओर सब जगह अग्नि लग जाती है, पर उस तिनके को कुछ भी नहीं होता है। और अग्निदेव पूरी शक्ति से जलाते हैं। अग्निदेव की इतनी शक्ति है कि वास्तव में बड़े बड़े शहरों को जला सकते हैं, संपूर्ण ग्रह को जला सकते हैं क्रोध हो जाते तो, पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं वो। बाद में अग्निदेव ये थक जाते हैं। फिर वहां पे इंद्र आते हैं और इंद्र कहते हैं कि मैं तुम नहीं हिला पाए, मैं ऐसी बारिश करूंगा यहाँ पे कि बारिश में ये बह जाएगा। तो बारिश का वर्षाव वहां पे करते हैं। जब वर्षाव करते हैं तो वो वर्षा होते रहती है, पानी गिरता है, पानी बहता है, वो तिनका वहीं पे रहता है। तो इस तरह से सब देवता गणाते हैं, सब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यमराज आते हैं। यमराज तो कहते हैं कि मैं अंत का हूं, मैं सबकी मृत्यु करता हूं, बड़े बड़े राजाओं को, असुरों की, देवताओं की मृत्यु करता हूं मैं, तो ये तिनका क्या बड़ी बात है। पर जो यमराज है वो भी इस तिनके कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह से सब देवता एक के बाद आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर जब वो सब थक जाते हैं तभी वो आकाशवाणी से आवाज आता है। वो कहता है कि अभी तुम समझे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो देवतागण एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और वो कहने लगते हैं केन, ये कौन व्यक्ति है, कौन है ये जो सर्वश्रेष्ठ है। वो समझ जाते हैं कि ये हम में से कोई नहीं है, पर ये है कौन। तो वहां पे ये वृत्तांत है, सब देवताओं का वर्णन है पर विष्णु का वर्णन नहीं है। तो केन उपनिषद में जो है इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये सवाल उठाया है और ये जो कथा है बताई गई है जिससे ये दर्शाया गया है कि जो बाकी सब देवता है, जो अंतर, जो ब्रह्मांड के अलग अलग विभागों को के अध्यक्षता करते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पर सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका जवाब नहीं दिया है। तो उसका जो जवाब है, जो उपनिषद है, उपनिषद वो इनडायरेक्टली, व्हाट इज इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से बताते हैं। जो शास्त्र है वह अलग अलग प्रकार से उपदेश देते हैं। जो उपनिषद होते हैं ज्ञानी लोगों के लिए होते हैं। तो ज्ञानी लोग होते हैं उनको अगर सरल जवाब दे दिया जाए, सरल जवाब दिया जाए तो बोलते हैं ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई मजा नहीं है। तो उनको सरल जो जवाब है अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम अपना मनोगणित कल्पना करना चाहते हो, तो तुम अपना तर्क वितर्क करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ऐसा तर्क वितर्क करने का मौका दूंगा कि तुम जन्म जन्मांतर तर्क वितर्क में फंसे रहोगे। तो शब्द जाल महारण्यम न भुक्तये न मुक्तये, ऐसे बताया गया है उपनिषदों के बारे में कि शब्द जाल क्या है, एक महारण्य है। अगर कोई जंगल में फंस गया है तो जंगल में क्या होता है, सब जगह पे झाड़ी दिखती है और रास्ता कहीं है तो कहां जाऊं, इधर जाऊं कहां जाऊं, कुछ पता नहीं है। तो वैसे ही जो उपनिषदों में ये स्पष्ट है कि एक परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर वह कौन है वह स्पष्ट नहीं है। और अगर इसकी में फंस जाता है व्यक्ति, शब्द जाल महारण्यम, तो उसमें अगर फंस जाता है तो क्या, महारण्य है, तो उसको क्या होता है, दो प्रभाव होते, न भुक्तये न मुक्तये। व्यक्ति भोग भी नहीं कर पाता है क्योंकि समझता है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, कोई परम पुरुषोत्तम है, कोई परम व्यक्ति है, कोई परम सत्य है, पर वो कौन है क्या है पता नहीं है, इसलिए न भुक्तये न मुक्तये।
पर वह जो उपनिषदों में गुह्य ज्ञान है, वह जो गीतोपनिषद है, जो भगवद गीता है, वह उपनिषद है, उसको साधारणतया 108 उपनिषदों में नहीं बताया जाता है। पर भगवद गीता जो श्रीपाद शंकराचार्य है और उनके पहले जो गीता महात्म्य है पद्म पुराण में आता है, उन दोनों में इसका वर्णन आता है कि ये गीतोपनिषद जो है सब उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषद गाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। उसमें बताया गया है कि सब उपनिषद जो है वो एक गाय के समान है, और जो गाय का सार क्या है वो दूध है। दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन जो भगवान कृष्ण है, जो गोकुल नंदन है, जो गोकुलानंद है, वे दुग्धा है। और जो गाय होती है दूध कब देखती है, देती है जब कोई बछड़ा सामने आता है, तो बछड़े को देख के गाय दूध देती है। तो वो बछड़ा कौन है? पार्थवत्स सुधीर भोक्ता, तो पार्थ है। पर जो गाय जब अपने बछड़े को दूध देती है तो बछड़ा थोड़ा दूध पी लेता है, बाद में बाकी सबको भी दूध मिल जाता है। तो इस तरह कहते सुधीर भोक्ता, तो सुधीर मतलब जो व्यक्ति धीर है वह इस दूध का भोग कर सकते हैं। तो दूध क्या है? दुग्धम गीतामृतम महत, जो गीता का अमृत है वह यह दूध है। तो अहम सर्वस्य प्रभवो, जो यहाँ पे जो उपनिषदों में गुह्य है वह इस भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य है, इसमें सभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बहुत से वैदिक श्लोक कोट करते हैं। तो इस कौन से परिचय होने के पहले मैं कई अलग अलग आध्यात्मिक शिक्षकों गुरुओं के ग्रंथ पढ़ा करता था, और उनके सब ग्रंथों में बहुत कुछ अच्छा बताया जाता था, पर बहुत से जो लोकप्रिय आध्यात्मिक नेता है वे शास्त्रों को कभी कोट नहीं करते, वो कोई अपने विचार बताते हैं, और कभी कभी शास्त्रों का बीच में नाम आ जाएगा, पर प्रभुपाद जी बहुत श्लोक कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि बताया मैं मेरा संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं शास्त्रों का संदेश दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी बताते कि मैं एक पोस्टमैन के समान हूँ, भगवान ने जो आपको संदेश दिया है, अगर हमारे लिए कोई रिश्तेदार कोई चेक भेजता है तो पोस्टमैन केवल एक संदेश वाहक है। तो प्रभुपाद जी कहते कि भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है, मैं एक पोस्टमैन के समान संदेश वाहक हूँ जो आपको संदेश दे रहा है। तो ये जो श्लोक है 10.8 भगवद्गीता का, इस एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे ज्यादा श्लोक कोट करते हैं, दूसरे किसी भी तात्पर्य में इतने श्लोक नहीं कोट किए प्रभुपाद जी जैसे इस तात्पर्य में किए हैं। और फिर इसके बाद में जो बताया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ सबका स्रोत हूं, और जो ये समझता है वो मेरी भक्ति करते हैं। तो किस तरह से भक्ति करते हैं वो अभी अगले श्लोक में है। तो आप जहां तक हो सके मेरे पीछे दोहराइए श्लोक। इट्स देयर आल्सो ऑल फोर आर देयर। ओके फाइन, ओह इज इट ओके। तो नौवां श्लोक हम दोहराते अभी। मच्चित्ता मद्गता प्राणा, चित्ता मद्गता प्राणा, बोधयन्तः परस्परम्, बोधयन्तः परस्परम्, कथयन्तश्च माम नित्यम्, कथयन्तश्च माम नित्यम्, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस श्लोक में जो भाव समन्विता किस तरह से भक्ति करते हैं वो बताया गया है। तो साधारणतया हमारे जो अस्तित्व है, हमारा जीवन है, वह हम तीन प्रकार से कार्य करते हैं उसमें, हमारे मन से, हमारे वाणी से और हमारे शरीर से। तो इसमें बताया गया कि जो भक्ति करते हैं ये वो तीनों चीज से कर रहे हैं। तो मत चित्ता, चित्त मतलब मन, अंतकरण। तो वो जो शुद्ध भक्त है वो अपने मन से हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मत चित्ता। फिर मद्गता प्राणा, वो अपना आयुष्य है, अपना प्राण है, वो संपूर्ण भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो इसे संदर्भ होता है, आचार्यगण बताते हैं कि वो अपने शरीर से भी भगवान की सेवा करते हैं। और फिर बोधयंता मतलब बोलना, कथयंता मतलब बोधयंता मतलब सुनना, कथयंता मतलब बोलना। तो ये क्या है? वाणी का उपयोग है। तो इस तरह से मन से, शरीर से और वाणी से, तीनों से भक्ति करते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है तो दिखावा क्यों करते हो आप? आप अपने हृदय में भक्ति करो, भगवान का नाम लो, आपको इतने जोर जोर से कीर्तन करने की क्या जरूरत है? हाँ भक्ति भगवान हृदय में, आप हृदय में भक्ति कर लोगे भगवान सुन लेंगे, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में जो भक्त भक्ति करते हैं तो वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, वह एक स्वाभाविक प्रदर्शन है। जो जो भावनाएं अंदर होती है तो वो स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। तो ये जो भक्ति करते हैं हम जोर से हाथ उठा के कीर्तन करते हैं, यह एक दिखावे के लिए नहीं है, यह वास्तव में जो भावनाएं हैं उनका व्यक्त उनको व्यक्त करना एक स्वाभाविक है। अगर कोई छोटा बालक है और वो रो रहा है और माँ सामने बैठी है और माँ देख रही है, बालक रो रहा है माँ देख रही है, बालक रो रहा है माँ देख रही है, बालक वो कहेगा माँ की ओर देख रहा है, माँ कह रही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ रोते रहो तुम। नहीं, अगर प्रेम करती है तो क्या होगा, माँ तुरंत उसको उठा लेगी, गोद में लेगी, उसको सहलाएगी। तो अगर प्रेम है तो उसको स्वाभाविक रूप से व्यक्त होता है। तो अगर अगर तो आध्यात्मिक भगवान का जो प्रेम है वह किसी भी भौतिक प्रेम से बहुत बहुत तीव्र है, बहुत बहुत शक्तिशाली है। तो अगर भौतिक भावनाओं को अगर हम प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं तो फिर आध्यात्मिक भावनाओं क्यों ना प्रकट करें। और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ प्रकट करना, भावनाओं को हम जब कीर्तन करते हैं तो उससे दो चीजें होती है, जो भावनाएं है वह प्रकट होती है, और न केवल प्रकट होती है पर उससे भावनाएं विकसित भी होती है। जब माँ अपने बेटे को गोद में लेती है, उसको सहलाती है और फिर उसको शांत करती है, तो उससे क्या होता है, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है वो बढ़ता है। तो इसी तरह से जब हम कीर्तन करते हैं तो फिर कीर्तन में न केवल हम भक्ति व्यक्त कर रहे हैं पर उससे भक्ति जागृत भी कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर भावनाएं हैं तो फिर हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं कीर्तन करके, और भावनाएं नहीं भी है तो भी क्या होता है, जब हम कीर्तन करते हैं तो उससे भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि बोधयंतः कथयंतः और फिर चित्ता। तो जो आप जानते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज ये 7वें स्कंद में 8वें अध्याय बताते हैं हिरण्यकशिपु को कि यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है कि इस 9 प्रकार से भक्ति करना। तो विश्वनाथ चक्रवीर ठाकुर बताते हैं कि इन 9 प्रकार की भक्ति में, भक्ति के जो अंग है उसमें पहले 3 जो है सबसे प्रधान है, श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। इसीलिए इन 3 का उल्लेख इस श्लोक में हुआ है। स्मरण करना है उसका जो उल्लेख है, मच्चित्ता और मेरा स्मरण करते हैं, और फिर बोधयंतः वो उसका श्रवण करते हैं, कथयंतः वो बोलते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रधान भक्ति के अंग है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। और क्योंकि भगवद गीता जो है रणभूमि भी बताई गई है, तो रणभूमि में जो बताई गई थी तो भगवान ज्यादा विस्तारित रूप से सब कुछ बता नहीं पाए, इसीलिए सब 9 जो अंग है भक्ति का उनका उल्लेख नहीं करते हैं भगवान। पर यहां पे एक महत्वपूर्ण शब्द है च, च मतलब और वो भी, और जो और भी क्या है, बाकी सब 6 जो अंग है उनका उल्लेख किया गया है। और मच्चित्ता ये बहुत सुंदर शब्द है, प्रभुपाद जी इसका भाषांतर क्या करते हैं, वो भक्त मेरे बारे में सोचते ऐसे नहीं बताते हो, इसका भाषांतर बहुत सुंदर करते हैं प्रभुपाद जी, देखिए भक्तों के विचार मुझ में निवास करते हैं, जो भक्तों के विचार है मुझ में निवास करते हैं, द थॉट्स ऑफ माय प्योर डिवोटीज ड्वेल इन मी। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम, हमारा सबका घर है, तो हम घर से बाहर जाते हैं कुछ काम है, पर जैसे ही काम हो जाएगा घर में लौट के आ जाते हैं। तो वैसे जो भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करनी है, कुछ कार्य करना है, तो बाकी सब चीजों को सोचेंगे, पर जैसे ही हो जाएगा काम तुरंत भगवान के बारे में सोचेंगे, और जो भी बाकी काम है वो भी भगवान से संबंधित है। तो इसीलिए जो भक्ति का मतलब क्या है कि वो केवल जप करना या मंदिर में आना या सेवा करना नहीं है, ये सब जरूरी है, महत्वपूर्ण है, पर वास्तव में भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान को हमारे विचारों का निवास बना देना। मतलब हमारे विचार जहां भी जाते हैं, जब कुछ काम नहीं है, कुछ और कर्तव्य नहीं है, तुरंत भगवान के विचार लग जाते हैं। तो इस तरह से मत चित्ता मत गता प्राण, इसका बलदेव विद्याभूषण अर्थ बताते हैं कि जैसे कोई मछली होती है उसका प्राण जो है जल पे निर्भर है, मछली को प्राण जल से निकाल देंगे तो तड़पने लगेगी और मृत्यु हो जाएगी उसकी। उस तरह जो भक्त है अगर उनको भगवान से दूर किया जाता है तो प्रभुपाद जी दूसरे तात्पर्य बताते हैं छठे अध्याय के 18वें श्लोक के तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद जी कि अ डिवोटी कैन नॉट बियर टू स्पेंड इवन वन मोमेंट विदाउट सर्विंग कृष्ण, कि भक्त जो है वह भगवान की सेवा किए बिना एक पल भी रह नहीं सकता है, हमेशा भगवान की सेवा करते रहते। जो हरीशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के सेवक के रूप में उन्होंने काफी समय तक सेवा की थी, तो एक बार प्रभुपाद जी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जो ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में प्रभुपाद जी सोने के लिए लेट गए थे और हरीशौरी प्रभु बाकी सब योजना करके वो भी सो गए, और तभी अचानक प्रभुपाद जी उठ गए और उन्होंने हरीशौरी प्रभु को बताया कि रिकॉर्डर दो मुझे, और फिर रिकॉर्डर प्रभुपाद जी आप जानते हैं कि वो रोज सुबह जल्दी उठ के जो अपने ग्रंथों का रिकॉर्डिंग करते थे और फिर दूसरे भक्त बाद में उसको टाइपिंग करके उसको ग्रंथ के रूप में तैयार करते थे, और जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डर दे दिया तो प्रभुपाद जी बोलने लग गए, और जब हरीशौरी से सुन रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो प्रभुपाद जी बोल रहे बहुत ही सोच समझ करके जो बोला है वो बोल रहे इस तरह से, तभी उनको समझ में आ गया कि जब प्रभुपाद जी जब सो रहे ऐसे लग रहा था तो वास्तव में तभी सो नहीं रहे थे, वो विचार कर रहे थे और विचार करके लिख रहे थे क्या लिखना है। तो वो अभी इस तरह से हमेशा मदगता प्राणा, प्रभुपाद जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो जब सब पांच पांडव जंगल में उनको वनवास में भेज दिया गया दूसरी बार, पहली बार जब वनवास में गए थे वो जब वारणावर्त में जला दिया गया था वो जो उनके महल को, तब जंगल में गए थे, तो उस समय भी छह व्यक्ति थे, छह व्यक्ति कौन थे, पांच पांडव और कुंती थी। दूसरे बार भी जब वनवास में गए तभी भी छह व्यक्ति थे पर पांच पांडव और द्रौपदी थी। द्रौपदी का विवाह हो गया था और फिर विदुर ने कहा था कि भी कुंती का जो उम्र है बहुत बड़ा हो गया, बहुत वृद्ध हो गई है, वो जंगल की जो तपस्या है सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसको मेरे पास रहने दो। इसलिए कुंती देवी जो थी वो विदुर के घर में रह रही थी उस समय। तो इस बार जब पांडव गए थे तो फिर जो पहले तो बड़े क्रोध में थे वो सब, बड़े क्रोध में थे, और फिर जब जंगल में गए तो काफी ब्राह्मणगण काफी ऋषिगण उनको संग देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनका संग लेने के लिए आ गए। तो एक बार जब पांडव सब ब्राह्मणों के साथ बैठ के वहां पे जंगल में जाते थे तो क्या करते थे, वहां पे कोई राज्य कारोबार नहीं है कर, तो वो सब ब्राह्मणों के साथ बैठ के कथा करते थे, कथा सुनते थे। तो फिर तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक ज्योति आ गई, ज्योति जैसे कोई ज्योतिमान व्यक्ति आ गया है। पहले उनको लगा ज्योति सारा जो जंगल था ऐसे उजागर हो गया, ऐसा लग रहा था उज्ज्वलित हो गया, फिर बाद में देखा कि जो ज्योति है किसी व्यक्ति से आ रही है। तो एक ऊंचा व्यक्ति था, बिल्कुल सीधा खड़ा रह के आ रहा था और देखा कौन है, और बाकी सब ब्राह्मण थे तुरंत उड़ गए और प्रणाम करने लग गए। फिर युधिष्ठिर ने देखा और फिर युधिष्ठिर ने भी प्रणाम किया, बाकी सब पांडव ने प्रणाम किया, द्रौपदी ने प्रणाम किया। ये कौन थे, ये मार्कंडेय ऋषि थे। तो मार्कंडेय ऋषि वह वो पिछले हफ्ते में बता रहा था कि कैसे जो चार प्रकार के लोग होते, मर्त्य अमर चिरंजीव और नित्य, बहुत अच्छा। तो जो मार्कंडेय ऋषि है वो एक प्रकार से चिरंजीव जैसे है, वो तो बहुत समय तक वो प्राचीन काल से वो जी रहे हैं। तो इसीलिए जब ये सब ब्राह्मण ने उनका आदर से सत्कार किया और युधिष्ठिर महाराज वो अतिथि थे, वो यजमान थे, उन्होंने अतिथि के रूप में उनकी पूजा की, उनके चरण धोए, फिर वो कहा कि आपने तो बहुत से ऋषिगण हैं उन्होंने दूसरे से श्रवण करके ज्ञान प्राप्त किया है, पर आप तो इतने समय से हो कि आपने सब कुछ देखा है, तो कृपया आप मुझे कोई भगवान की कथा बताओ। तो यह सब जब हो रहा था तो जो मार्कंडेय ऋषि स्मित कर रहे थे, थोड़ा हंस रहे थे, थोड़ा हल्का हल्का हंस रहे थे, और फिर जब ऐसे हंस रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुनिवर्य अभी तक जितने भी ब्राह्मण हो जितने भी ऋषियों से मैं मिला हूं तो उन सब ने मेरी जो गति है, मेरी जो व्यथा है, मेरी जो दुर्दशा है यह देखकर दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है, तो आप प्रसन्न कैसे लग रहे हो। तो बोले कि वास्तव में मेरा अपमान हुआ, मेरा राज्य छीन लिया गया है, मेरे पत्नी का अपमान हुआ और अभी मैं जंगल में वनवास कर रहा हूं, तो फिर यह सब देख के आप प्रसन्न लग रहे हो, इसे देख के मुझे कुछ विडंबना जैसे महसूस हो रही है। तो मार्कंडेय ऋषि स्मित बरकरार ने कहा कि मैं तुम्हारे दुख से प्रसन्न नहीं हूं, पर मैं देख रहा हूं कैसे इतिहास पुनः दोहराते रहता है। हाउ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कैसे इतिहास दोहराते रहता है। मतलब क्या मतलब बोले हो, कि जो आज तुम्हारी गति हुई है वह इसके पहले प्रभु श्री रामचंद्र की हुई थी। उनको भी जंगल में जाना पड़ा था, और वो जब जंगल में गए थे तो वो चार भाई थे, उनके साथ एक ही भाई आया था, तुम्हारे साथ चारों भाई आए हैं। तो इसीलिए वास्तव में पुरुषी रामचंद्र वो परिवार को छोड़ के आए थे, आपका लगभग सारा परिवार साथ में आया है, तो आपकी दुर्दशा उनकी उतनी नहीं है। पर मैं भविष्य को भी देख सकता हूं, और मैं जानता हूं जैसे प्रभु श्री रामचंद्र को पुनः राज्य प्राप्ति हो गई थी, और बाद में उन्हें राम राज्य जैसे जो आदर्श राज्य रचा था, उसी तरह से तुम भी पुनः राज्य प्राप्त कर लोगे, और पुनः तुम एक आदर्श राजा के रूप में नैतिकता का एक 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 प्रतीक बन जाओगे, तुम आदर्श राज्य और नैतिकता का। यह भी मैं भविष्य में देख रहा हूं। तो फिर ये सुनते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तो कृपया मुझे आप प्रभु श्री रामचंद्र की कथा बताइए। तो जब ये कथा चालू हो जाती है, तो वास्तव में जब कथा होती है तो पांच पांडव जो है, महाभारत की विशेषता क्या है कि पांच पांडव अगर हम उसको करीब निरख के देखते हैं तो हर एक पांडव का जो स्वभाव था अलग था, हर एक पांडव का व्यक्तित्व अलग था। तो जिसे हाथ की पांच उंगलियां होती है वो सब पांचों अलग थे, पर फिर भी वो पांचों पांडवों का एक तात क्या, वो सब भगवान के भक्त थे। तो जब ऐसे कथा चालू जाती थी तो जो भीम थे, भीम थोड़े बेचैन हो जाते थे, वो सोचते थे कि मैं कथा सुनना नहीं चाहता, मैं कथा करना चाहता हूँ। कथा करना चाहता हूँ मतलब प्रवचन देना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे कार्य करना चाहता हूँ कि उसकी कथा होगी बाद में। तो भीम जो थे बेचैन थे कि कब युद्ध हो जाएगा, कब युद्ध शुरू हो जाएगा। तो पर जो प्रभु श्री रामचंद्र की कहानी शुरू, कथा शुरू हो गई, तो भीम भी उसमें मग्न हो गए। और ये जो कहते हैं, ये जो है महाभारत का विभाग आता है, ये अरण्य पर्व में आता है, उसको कहते हैं अनुरामायण। संपूर्ण रामायण को एक अनुरूप में, एक लघु छोटे रूप में बताया गया है। और इस तरह से पांडव जो श्रवण करने लग गए, तो जब तक इसके पहले मार्कंडेय ऋषि आने के पहले बार बार उनको स्मरण हो रहा था कि कैसे, खास करके दो व्यक्तियों को, द्रौपदी को और भीम को। द्रौपदी का अपमान हुआ था और भीम जो लग रहा था कि भीम को लग रहा था कि मैंने प्रतिकार किया नहीं, मुझे प्रतिकार करने की, उसके ये दोनों सबसे अधिक बेचैन थे। पर जब इस तरह से कहानी चालू हो गई, कथा चालू हो गई, तो सब कुछ भूल गए, और वो ये भूल गए कि उनका अपमान हुआ था, वो भूल गए थे कि वे अभी एक तरह से कंगाल है, वो भूल गए कि वो जंगल में वनवास में है, और भगवान की कथा में इस तरह से लीन हो गए कि कुछ भी याद नहीं रहा। यह भगवान के श्रवण कीर्तन की शक्ति है। मदाश्रय कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधा स्तापा नैतान् मद्गत चेतसः। तो कपिल देव जो है भागवतम के तीसरे स्कंध में बताते हैं कि जब भक्त मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कथा न केवल सुनते हैं, मदाश्रय, वो कथा के द्वारा मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, तपन्ति विविधा स्तापा, इस भौतिक जगत में अलग प्रकार के ताप आते रहते हैं, पर नहीं तान मत गत चेत सहा, वो जो ताप है कभी मुझे प्रभाव नहीं करते। क्यों प्रभाव नहीं करते हैं, क्योंकि जो भगवान की जो कथा है वो इतना बड़ा आनंद देती है कि जो भौतिक स्तर पे जो व्यथाएं है वह महसूस भी नहीं होती है। तो ये पांडव क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो होते हैं उनको मान अपमान का बहुत एहसास रहता है, पर क्षत्रिय भी होते हुए भी जो पांडव भक्त है, और इसलिए भक्तों के रूप में वो अपनी जो भौतिक परिस्थिति के परे चले जाते हैं। तो यह उदाहरण है महाभारत में कैसे भक्त भगवान के श्रवण कीर्तन में लग जाते हैं। और जो श्रीधर स्वामी है महान आचार्य बताते हैं यहाँ पे रमंती, तो रमण ये क्या है, किस प्रकार, साधारण आनंद नहीं है। नंदती मतलब आनंद लेना, रमंती मतलब ये एक विशेष प्रकार का आनंद है। जैसे जो आनंद होता है पुरुष और स्त्री इस भौतिक जगत में, जो भी आनंद है उसमें सबसे तीक्ष्ण तीव्र जो आनंद है वो पुरुष और स्त्री के संग में आनंद है। पर बताते हैं कि यहाँ पे जो भगवान के श्रवण कीर्तन में जो आनंद लेते हैं भक्त, वह इसके समान ही है, वास्तव में इससे बड़ा है। पर इसके समान क्यों बताया गया है रमंती, क्योंकि वह उसी प्रकार से तीव्र है, उसी प्रकार से व्यक्ति को सब कुछ भुला देता है। और इसका प्रदर्शन आता है भागवतम के दशम स्कंद में भगवान और गोपियों की लीला में। तो भगवत गीता में वृंदावन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, पर उसका संकेत है रमंती, जैसे कृष्ण का नाम है राधिका रमण, तो रमंती च। गुड, नेक्स्ट श्लोक। तो जो इस श्लोक में क्या बताया गया है, किस तरह से भक्त बुधा भाव समन्विता, वो भाव के साथ, भावनाओं के साथ वो भक्ति करते हैं। और अभी अगले दो श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस तरह से जो भक्त है वो बुद्धिमान हो जाते हैं। तो क्या है कि लोगों को लगता है कि जो भक्त है कीर्तन करता है, जप करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं करते तो बुद्धिमान नहीं हो गए। पर भगवान कहते हैं नहीं, भक्त सबसे बुद्धिमान है। और कैसे बुद्धिमान है, कहते हैं कि मैं उनको बुद्धि देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं, ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं तेषां, तेषां मतलब वह लोग, वो लोग कौन है जो पिछले श्लोक में बताए हैं, जो मच्चित्ता मद्गता प्राणा, जो इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, तेषां सतत युक्तानां, वो हमेशा मेरी भक्ति में लगे रहते। तो वे लोग कहेगा कि अगर आप हमेशा भक्ति भक्ति करते रहोगे तो आपको शास्त्रों का अध्ययन करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उससे फिर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान कैसे मिलेगा, भगवान कहते नहीं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, अगर वो प्रीति से मेरी भक्ति करते हैं तो ददामि, ददामि मतलब देना, बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूँ। किस प्रकार की बुद्धि, योग के लिए बुद्धि, योग मतलब भगवान के करीब जाना, भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ने के लिए जो भक्ति, जो बुद्धि है वह मैं प्रदान करता, ददामि बुद्धि योगम तम। और वह अगर बुद्धि योग से अगर स्पष्ट नहीं हुआ है तो अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं भगवान, ये नमाम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा जो भक्त है मेरे पास आ सकते हैं, ये इसके द्वारा वह मेरे करीब आ सकते हैं। तो भक्तों को कभी बुद्धि का अभाव नहीं होता है, भक्ति के द्वारा ही बुद्धि अपने आप आ जाती है। जो पुराणों में कथा आती है कि किस तरह से कलयुग में जो ज्ञान और वैराग्य है वो वृद्ध बीमार अशक्त हो जाते हैं, केवल भक्ति जवान रहती है। और भक्ति के, भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र है, पर भक्ति जवान रहती है, पुत्र बूढ़े हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि लोगों में ज्ञान और वैराग्य की क्षमता नहीं है कलयुग में, अच्छा क्षमता नहीं है, पर भक्ति के द्वारा जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम। यही भाव श्रीमद् भागवतम में भी आता है, पहले अध्याय के दूसरे स्कंद के सातवें श्लोक में, कि कोई भक्ति करता है तो उससे ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री का संग हो जाता है तो उससे संतान उत्पन्न होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है, इसी श्लोक का विस्तारण भागवत में होता है, कि जब हम हमारे हृदय में भक्ति के द्वारा भगवान का संग करते हैं तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, तो भक्ति और भगवान का जब संग होता है हमारे हृदय में तो उससे दो संतान उत्पन्न होते हैं, वो कौन है, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य के स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया तो बड़ा बड़ी समस्या होती है उसमें, पर अगर भक्ति कर ली तो उससे अपने आप बुद्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। और ये जो बुद्धि है किस लिए है, भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके लिए है। तो जो सेवा है भगवान की वह अलग अलग प्रकार से की जाती है। भगवान की सेवा हम करते हैं, अभी रथ यात्रा, रथ यात्रा का आयोजन करना है उसके लिए हमको बुद्धि लगती है, उसके लिए हमें जो लक्ष्मी अर्जित करनी है उसके लिए बुद्धि लगती है, भगवान का आभूषण करना है, उनको सुशोभित करना है उसके लिए बुद्धि लगती है। अलग अलग प्रकार से जो भी सेवा है उनकी जो बुद्धि लगती है, उनके लिए जो बुद्धि लगती है वो भगवान प्रदान करते हैं। जो अर्जुन की सेवा थी जो भगवद्गीता के पार्श्वभूमि में, कि युद्ध करना, और जब युद्ध करने के लिए भी न केवल क्षमता लगती है, क्षमता मतलब जो धनुर्विद्या में प्रवीणता लगती है, पर उसके लिए बुद्धि भी लगती है। तो कई बार जो अर्जुन होते हैं, अर्जुन को हम देखते हैं उनके जीवन में कि युद्ध के समय में ऐसी समस्या आ जाती है कि कैसे उसको पार करे पता नहीं है, पर फिर भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तो जो महाभारत के जो युद्ध का 13वां जो दिन था, वह बहुत ही एक तरह से निर्णायक दिन था। तो 12वें दिन में अभिमन्यु ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया, पर अन्याय से 6 योद्धाओं ने उनको मार डाला साथ में। फिर बाद में 13वें दिन की जब युद्ध शुरू हुआ, तो सारा जो कौरवों का जो व्यूह था, सेनाओं की रचना थी, वो जयद्रथ के संरक्षण के लिए थी। और जब अर्जुन इतनी भीषणता से युद्ध कर रहे थे उस दिन कि कौरव के कोई भी योद्धा उनके सामना ही नहीं कर पा रहे थे, तो जो भी उनके सामने आता था युद्ध करने के लिए, यद्गत्वान अनिवर्तन थे, जो आता था वो कहीं जा ही नहीं पाता, युद्ध कर पाता था ना दौड़ पाता था, उसके वो वीरगति प्राप्त कर रहा था। और फिर वो सीधा भेद करके जा रहे थे, और यह देख के दुर्योधन जो है बड़ा चिंतित हो गया। और दुर्योधन बोला कि तभी उस समय के लिए द्रोणाचार्य जो सेनापति थे, पहले 10 दिनों के लिए बीच में सेनापति थे, 11वें से 15वें दिन के लिए द्रोणाचार्य सेनापति थे। वो कहने लगे, आचार्य ये अर्जुन ऐसा लग रहा है कि न केवल वो अपना व्रत पूरा करेगा जयद्रथ को मारने का, पर उसके साथ साथ मेरी सारी सेना का भी अंत कर देगा एक ही दिन में, आप जरूर कुछ करो। द्रोणाचार्य गंभीर थे और वो कहने लग गए कि पांडवों ने अपनी जो रण की युक्ति जो है वह बहुत अच्छी तरह से बनाई है। उन्होंने क्या किया है, अर्जुन कृष्ण के साथ हमारे व्यू में तोड़ के प्रवेश कर रहे हैं, पर बाकी सब जो योद्धा है उन सब योद्धाओं को द्वंद में लगा दिया है पांडव के दूसरे योद्धाओं ने, तो और मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, क्योंकि अर्जुन अगर यहां पे पहुंच जाएगा तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी, तो हमें जयद्रथ का संरक्षण करना जरूरी है। तो मैं, कर्ण और अश्वत्थामा, हम तीनों यहां पे रहने वाले हैं। तो अभी कोई भी योद्धा अर्जुन से को रोकने के लिए नहीं है। तो ये सुन के दुर्योधन बड़ा विचलित हो गया, पर एक योद्धा है। तो दुर्योधन पूछे, कौन? द्रोणाचार्य कहे, तुम। तो तभी जब सुना था जो दुर्योधन था, पानी पानी हो गया, बोला मैं। दुर्योधन कहने लग गया कि आचार्य, जो इंद्र पूरा कोपित होगा, शायद मैं उससे युद्ध कर सकता हूं, पर जो पार्थ है इसको ऐसे भाव में आज तक कभी देखा नहीं है मैंने, कि ऐसा, क्योंकि अभिमन्यु के वध से इतना क्रोधित हो गया था अर्जुन कि उसका उस प्रकार से युद्ध उसके पहले कभी नहीं किया था। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं कैसे इस अर्जुन से युद्ध कर सकता हूं। तो वो कहने लग गया, तो एक तरह से क्षत्रिय को किसी से नहीं युद्ध नहीं कर सकता, ये बोला अपमान की बात है। तो फिर भी दुर्योधन अपना जो गर्व था उसको निगल के बोला था, मैं युद्ध नहीं कर सकता। और वो बोला और ऐसे बताने के लिए कि मैं वो उसको उस बात को दबाने के लिए वो कहने लगे कि आचार्य, ये जो समय है ये मजाक करने के लिए नहीं है, आप कुछ गंभीरता से कुछ बताओ। तो द्रोणाचार्य बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूं। तो दुर्योधन अभी वो फंस गया, बोले क्या करो। बोले कि दुर्योधन, द्रोणाचार्य बोले कि तुम हमारे राजकुमार हो, और मैं कदापि तुम्हें जो अर्जुन रूपी अग्नि है उसमें आहुति के रूप में अर्पण नहीं करने वाला हूं। पर मेरी एक योजना है। योजना क्या है कि मुझे जो देवताएं और ऋषिगण हैं उनसे अलग अलग प्रकार के अस्त्र प्राप्त हुए हैं, और उसमें से जो एक अस्त्र प्राप्त किया है वो है एक ऐसा कवच जिसको कोई भी भेद नहीं सकता है। तो ये जो कवच है इसका ज्ञान किसी को नहीं है, तो मैं ये कवच तुम्हें पहना देता हूं, और अगर ये तुम कवच पहन लोगे तो अर्जुन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुम अर्जुन को इस तरह से रोक सकते हो। तो
तो अभी द्रोणाचार्य, जब द्रोणाचार्य वास्तव में ये अर्जुन के गुरु हैं, और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जो शुद्ध भक्त है, द्रोणाचार्य भी भक्त है, उस दर्जे के शुद्ध भक्त नहीं है, पर द्रोणाचार्य जब ये द्रोणाचार्य जानते थे, पिछले दिन ही जब उनको सबको पता चला कि अर्जुन ने रथ लिया है जयद्रथ का वध करने का, तो दुर्योधन ने कहा कि आचार्य कल आप ऐसे रण की योजना कराओ, रण की सेनाओं की योजना करो कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो द्रोणाचार्य तभी समझ गए कि जयद्रथ की भी मृत्यु निश्चित है, तो वो जानते थे कि अर्जुन अकेला कभी पहुंच नहीं पाएगा, पर अर्जुन अकेला नहीं था, अर्जुन के साथ कृष्ण थे, और कृष्ण अगर है तो फिर सारे कौरवों की सेना क्या है, अगर देवताओं और असुरों दोनों की सेना भी साथ में आ गई तो भी अर्जुन और कृष्ण को साथ में रोक नहीं सकती है। तो द्रोणाचार्य जानते थे, पर द्रोणाचार्य जो दुर्योधन का गर्व है उसको कम करना चाहते थे, और वह अपने जो शिष्य है अर्जुन उसकी क्षमता भी देखना चाहते थे। तो वो जानते थे कि इस जो समस्या वो डाल रहे हैं अर्जुन के मार्ग में, उसको निपटना आसान नहीं है, पर देखते वो जानते थे कि अर्जुन अगर कोई फैसला कर लेते हैं तो जरूर उसको करके ही रहेंगे, पर कैसे करेंगे वो पता नहीं था, सोचते कैसे करेंगे मैं देखना चाहता हूँ उसको। तो इसलिए फिर तो दुर्योधन ने कहा, जरूर कवच दीजिए मुझे आप। तो वो जो कवच था वो वास्तव में ऐसे पहनने का कवच नहीं था, वो मंत्रों का कवच था, तो इसलिए वो कवच पहना अगर किसी ने है तो दिखता नहीं था वो कवच है, तो दुर्योधन से लग रहा था कि साधारण कवच ही पहना है उन्होंने। और फिर दुर्योधन कवच पहन के बड़े अहंकार के साथ वो अपने रथ पे चलने लग गए, और जब अर्जुन के सामने आ गया तो जैसे ही अर्जुन रुको मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तो जब दुर्योधन ने चुनौती दी इस तरह से तो सब चारे कौरव सैनिक थे वो चकमा गए, वो कहने है वो दुर्योधन से कहने लगे, उनका राजकुमार था कह नहीं सकते थे, पर वो अपने मन ही मन कहते भागो भागो बचना है तुमको, तुम अर्जुन से कैसे युद्ध कर सकते हो। तो तभी अर्जुन और कृष्ण आश्चर्य के थे, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन लगता है कि आज जयद्रथ को मारने के पहले दुर्योधन को मार के तुम पूरा युद्ध ही अंत कर सकते हो। तो अर्जुन ने कहा कि जरूर मैं ये करता, पर भीम को भी कुछ करने का मौका देना चाहिए, भीम ने व्रत लिया है दुर्योधन को मारना, पर मैं इसके गर्व को आज नाश कर दूंगा। तो फिर दुर्योधन ने कहा कि हे पार्थ तुम बड़ा व्रत लिया है, तुम जयद्रथ को पहुंचने के पहले तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और तो उसने कहा, तो अर्जुन ने कहा अर्जुन कुछ कहने के वाले थे तो उसके पहले कहा, तुम पहले अपने सामर्थ्य दिखाओ और फिर जब तुम थक जाओगे तो फिर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और फिर अर्जुन ने अपना तीर मारने लग गए वो धनुष से, और एक तीर दूसरा तीर चौथा तीर सब तीर आ रहे थे, और सब तीर जो थे दुर्योधन कुछ तीरों का प्रतिकार कर रहे थे। तो जो धनुर्विद्या में क्षमता होती है वो तीन प्रकार की क्षमता होती है, एक क्षमता होती है कि इतने तेजी से तीर मारना कि दूसरा वो तीर को प्रतिकार करने को समय ही नहीं मिलेगा, जैसे मशीन गन होता है, मशीन गन ठक 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 एक के बाद जो होते हैं उससे गोलियां निकलती हैं, पर जो बहुत ही अच्छा धनुर्विद्या में निपुण जो व्यक्ति है वह इतने तेजी से तीर छोड़ता है कि दूसरा भी धनुर्विद्या में निपुण है तो भी वह उतने तीर कभी छोड़ नहीं पाता है। दूसरी निपुणता है कि जो निशाना है वह बहुत ही अचूक होता है, और तीसरा है कि दिव्य अस्त्र होते हैं कि जो तभी ऐसे युद्ध होता था जो तीर ही शक्तिशाली होते थे, पर तीरों को अगर मंत्र देते हैं जैसे ब्रह्मास्त्र होता था, तो जो ब्रह्मास्त्र वो जो एक जो अस्त्र होता था पर उसके साथ साथ मंत्र बोला करते थे। तो अर्जुन में के पास ये तीनों प्रकार की निपुणता थी, वो इतने तेजी से तीर छोड़ते थे, उनके जो तीर जाते थे वो अचूक होते थे, और साथ साथ उनके पास बहुत दिव्य अस्त्र भी थे। जो दुर्योधन था वह भी धनुर्विद्या में निपुण था, पर अर्जुन इतना निपुण कोई भी नहीं था उसे। तो दुर्योधन जब प्रतिकार कर रहा था तो कुछ कुछ तीरों का प्रतिकार कर रहा था, पर बाकी जो तीर थे वो जाके दुर्योधन को घायल कर रहे थे, पर दुर्योधन को लग रहे थे पर दुर्योधन घायल ही नहीं हो रहा था, और सब तीर जो गिर रहे थे अपने बाजू में। तो दुर्योधन हंस रहा था, अर्जुन
तुम शक्तिहीन हो गए, तुम्हारे तीर मुझे कुछ भी नहीं कर पाते। तो अर्जुन क्रोधित हो गए। अर्जुन के तीर जो थे वो ऐसे होते थे कि वो पृथ्वी को भी काट सकते थे, और शक्ति से और शक्तिशाली तीर अर्जुन ने लगाए, और वही मारने लग गए, और फिर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर दुर्योधन हंसने लगे, और जो सारे जो सैनिक थे कौरवों के, वो तालियां बजाने लगे। वो पहले डर गए थे, अभी वो दुर्योधन का गुणगान करने लग गए, और दुर्योधन कहने लगे तुम अपने तीर चलाओ, फिर मैं मेरी तीरों की क्षमता तुम्हें दिखाऊंगा। और फिर जब ऐसे हो गया तो अर्जुन थोड़े विचार में पड़ गए, क्या हो रहा है ये। तो तभी कृष्ण जो थे अर्जुन को उकसाने लग गए। कृष्ण अर्जुन से कहने लगे अर्जुन क्या हो गया, तुम आउट ऑफ फॉर्म हो गए आज। तो बोले आज तो बहुत बड़ा मैच है, आज के दिन में तुम इस तरह से नहीं कर सकते। तो जब इस तरह से उकसाए लग गए तो अर्जुन थोड़ा क्रोधित हो गए, पर विचार में पड़ गए। और फिर अर्जुन विचार में पड़ गए, दुर्योधन अपने तीर मार रहा था, अर्जुन भी प्रतिकार कर रहे थे। तो अर्जुन बोले जब भक्त विचार करते हैं तो वो स्वतंत्रता से विचार नहीं करते, भक्तों के विचार में भगवान का स्मरण होता है, भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान से याचना होती है। तो जो भगवान इस तरह से बाहर से उकसा रहे थे अर्जुन को, पर वही भगवान अर्जुन के हृदय में परमात्मा के रूप में भी थे, तो उन्होंने उसको बुद्धि दे दी। और फिर अर्जुन हंसने लगे, स्मित करने लगे, बोले मैं समझ गया क्या बात है, राज क्या है। और उन्होंने कहा कि मेरे तीरों का जो प्रहार है वह कोई भी साधारण कवच नहीं कर सकता है। अगर दुर्योधन सहन कर पा रहा है तो इसका एक ही कारण है कि उसको द्रोणाचार्य ने अपना स्वयं का कवच दिया है। तो ये कवच ऐसा है कि तीनों लोकों के कोई भी अस्त्र उसको भेद नहीं कर सकता है। पर तो ये अगर ऐसे तीनों का कोई भी अस्त्र भेद नहीं कर सकता तो क्या करेगा अर्जुन। अर्जुन बोले फिर भी ये जो दुर्योधन है यह वास्तव में इसमें कोई क्षत्रिय का गुण नहीं है, इसके पास एक अभेद कवच है, पर यह ऐसा है कि एक स्त्री ने कवच पहना हुआ है, इसके पास कोई शक्ति है ही नहीं। तो फिर देखता हूं, अभी दिखाता हूं मैं आपको कैसे, अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे कि मैं तुमको दिखाता हूं किस तरह से इसके कवच के बावजूद मैं इसको परास्त कर देता हूं। तो द्रोणाचार्य ने जो कवच पहनाया था तो वो कवच इस तरह से था कि सारे शरीर को वह संरक्षित कर रहा था, पर जो जो उंगलियां थी उंगलियां के सामने का भाग था वह जो था असुरक्षित था। तो फिर वह सिर्फ अर्जुन को पता था, यह दुर्योधन को भी पता नहीं था क्योंकि पहली बार कवच पहना है, तो उसको लग रहा था वो हंस रहा था, अर्जुन चलाओ अपने तीर। तो अर्जुन ने बराबर निशाना लिया और 10 तीर छोड़े, और जो 10 तीर थे बराबर दुर्योधन के 10 उंगलियों में चले गए, और 10 उंगलियों में चले गए। उस दुर्योधन ने अपना धनुष और तीर गिरा दिया और चीखने लग गया, और उसको चीखते हुए देख के कृष्ण और अर्जुन हंसने लग गए और उसके आगे चले। तो दामी बुद्धि योगम तम। तो इस तरह से जब भक्त को सेवा करनी होती है तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं, और कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो बराबर अगर भक्त दृढ़ संकल्प रखता है तो बराबर भगवान बुद्धि देते हैं, और वह भक्त आगे चलते रहते हैं अपनी सेवा में। और फिर इस श्लोक में बताते हैं कि मैं बुद्धि देता हूं, और बुद्धि कैसे देता हूं ये अगले श्लोक में बताते हैं। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजम्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषां वो जो भक्त है उनको एव अनुकंपा, मैं अनुकंपा प्रदान करता हूँ। अनुकंपा क्या है? अहम अज्ञान जमतमः, कि अगर उनके हृदय में किसी कारण से अज्ञान है तो फिर क्या होता है, अज्ञान नाशयामि, मैं उसका नाश करता हूँ। कैसे? आत्मभावस्थो, मैं स्वयं उनके हृदय में विद्यमान हूँ, और ज्ञान दीपेन भास्वतः, मैं ज्ञान का दीप प्रज्वलित करता हूँ, और भास्वतः, मैं उनके अज्ञान को विनाश कर देता हूँ। तो वास्तव में भगवान सबके हृदय में है, और भगवान सबको मदद करना चाहते हैं, पर भक्त जो है भगवान की मदद की याचना करते हैं, और क्योंकि याचना करते हैं तो उनको भगवान बहुत मदद करते हैं। और साधारण लोग क्या मदद करते हैं, जिस प्रकार की इच्छा है उसके अनुसार बुद्धि देते हैं भगवान। पर जो भक्त है उसको भक्त की थोड़ी सी भी इच्छा क्यों ना, भगवान बहुत बुद्धि दे देते हैं और सारे अज्ञान का नाश कर देते हैं। और जो इस तरह से प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भक्त बुद्धिमान नहीं है। अगर हम जीव गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो विश्व के इतिहास में सबसे बड़े पंडित के समान है। वैसी तरह से माधव संप्रदाय में व्यास तीर्थ है, जय तीर्थ है, रामाचार्य स्वयं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। पर अगर कोई बड़ा कोई ऐसे भक्त है जिनमें बहुत बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है तो वो भी पीछे नहीं रहते हैं। उनको भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं। श्रीमद् भागवत में वर्णन श्लोक आता है कि अगर भगवान के भक्ति के मार्ग में अगर कोई भक्त चलता है कि महान भक्तों के उदाहरण के अनुसार, महान भक्तों के आदेश के अनुसार, तो व्यक्ति वो भले आंख बंद करके भी क्यों ना चले तो भी वो न तो गिरेगा न गुमराह हो जाएगा, क्योंकि भले आंख बंद है पर अंदर की जो आंखें हैं वो खुली है। भगवान अंदर से बुद्धि दे रहे ऐसे करो ऐसे मत करो, अहम अज्ञान जमतमा नाशयामी, मैं नाश कर देता हूं। और इसी का प्रदर्शन आता है अर्जुन के जीवन में जब भगवान अपना लीला अंत करके भगवत धाम लौट जाते हैं, तो इसका जो वर्णन है महाभारत में नहीं है, भागवतम में आता है। भागवतम के 14वें 15वें 16वें अध्याय में इस कथा का वर्णन आता है। अध्याय में क्या होता है, जब अर्जुन भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला अंत कर दी है, सब द्वारका वासियों को भगवत धाम ले गए हैं, और द्वारका है वह सागर से प्रकट हुई थी, सागर में वापस अदृश्य हो गए हैं। और इससे जो है अर्जुन पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गए हैं। और जब अर्जुन उद्ध्वस्त हो गए हैं और जो भगवान कृष्ण की रानियां हैं वह बची है तो उनको साथ में लेके आ रहे हैं, वो जो प्रधान रानियां हैं रुक्मिणी वगैरह, वो भगवान के साथ ही अपना शरीर त्याग देती है, भगवत धाम लौट जाती है, शरीर त्यागती नहीं, भगवत धाम लौट जाती है। पर जो बाकी सब रानियां हैं वह अर्जुन लेके आ रहे हैं, और तभी कुछ ग्वाले जो होते हैं वो आके आक्रमण करते हैं, और ये जो अर्जुन का प्रतिकार करने का प्रयास करते प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, और फिर वह जो भगवान की रानियां हैं उनको वो एक तरह से अपहरित कर लेते हैं। तो यह जो है यह देख के अर्जुन पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाते हैं। एक तो भगवान चले गए, सब परिवार चले गए, और भगवान की जो सेवा थी उनकी रानियों का सर्थ वो भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो इसका जो वर्णन है विश्वनाथ चक्र ठाकुर अलग अलग पुराण से कहानी बताते हैं कि जो भगवान की जो प्रधान रानियां थी वह भगवत धाम से आई थी, पर जो बाकी सभी रानियां थी जो भौमासुर ने जिनको अपहरित किया था वह अप्सराए कुछ में से कुछ अप्सराए थी, और उन्होंने पहले तपस्या की थी और तपस्या करके वर प्राप्त किया था कि भगवान हमें पति के रूप में चाहिए थे, तो वो तपस्या का व्रत फल उनको मिलता है, पर बाद में वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ऋषि मुनियों की ओर वो अपराध करके उनको हंस देती है, तो कहते हैं वो जो ऋषि मुनि को साप देते हैं कि विस्तारित कहानी में, पूरे कहानी में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, कि तुम जो हो तुम भगवान से वांछित हो जाओगी और तुम्हें अपहरण का जो बड़ा दुख है जो है वह तुम्हें सहन करना पड़ेगा। तो वो सब भगवान वो ऋषिगण से माफी मांगती है और याचना करती है कि कृपया ऐसे ना होने दे। तो वह ऋषिगण कहते हैं कि ठीक है, तो मैंने जो शब्द बोला है उसको पीछे नहीं ले सकता, तो तुम्हारा अपहरण होगा, पर जो तुम्हें अपहरण करेंगे वो तुम्हारे स्वामी ही होंगे। तो इसीलिए ऐसे विश्वनाथ चक्र बताते हैं कि अर्जुन को कोई हरा नहीं सकता है, अगर कोई हरा सकता है वो स्वयं कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण ही इन ग्वालों के रूप में आते हैं और उनको अपनी रानियों को वापस अपने साथ ले जाते हैं, पर अर्जुन को यह पता नहीं है। वहां पे अर्जुन को लग रहा है कि मैं मेरे प्रभु की सेवा करने में असमर्थ हो गया और मैं परास्त हो गया, तो इसे पूरी तरह से वो उस समय उद्ध्वस्त हो गए हैं मानसिक रूप से। और तभी क्या होता है, तभी अपने भक्त को इस तरह से उद्ध्वस्त देखकर भगवान पुनः जो भगवद गीता का संदेश है उसका स्मरण देते हैं अर्जुन को। और जब भगवद गीता का स्मरण करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे अर्जुन का जो मन है पुनः शांत हो जाता है और पुनः जो ज्ञान और भक्ति उजागर हो जाती है, समझ आते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा के अनुसार मैं इतनी सेवा कर पाया, अभी भगवान की इच्छा नहीं है तो मेरी शक्ति चली गई है, तो शक्ति हो या ना हो मैं हमेशा भगवान का सेवक हूँ। तो इस तरह से जो वो जो शोक और विलाप का अज्ञान जो अर्जुन के हृदय में आ गया होता है उसको भगवान की कृपा से निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद जी जब विश्वभर में प्रचार कर रहे थे तो वास्तव में प्रभुपाद जी को प्रचार करना यह बहुत खतरा मोल लेने का बात था। खतरा अनेक पद्धति से था, एक प्रकार का खतरा था कि स्वयं 70 साल की उम्र में जा रहे थे तो उनका सेहत अच्छा रहेगा कि नहीं, शारीरिक रूप से वो सहन कर पाएगा कि नहीं, उससे बहुत से सन्यासियों के लिए खतरा होता है कि अगर दूसरे देशों में जाएंगे जहाँ पे भौतिकवाद बहुत है तो उनकी शुद्धता को बरकरार रख पाएगा कि नहीं। तो प्रभुपाद जी इतने दिव्य थे कि उनको ये चिंता नहीं थी, पर क्या होता है उनकी जो खतरा बड़ा खतरा था क्या कि जो पाश्चात्य देश से जो पहले बड़ी दूषित पार्श्वभूमि से जो आए हैं उनको जब भक्ति में लगाया गया तो वो अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे, पहले कुछ सालों में प्रभुपाद जी सब भक्तों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया करते थे, पर बाद में जब संस्था बढ़ गई तो प्रभुपाद जी को सबको प्रशिक्षण देना संभव नहीं था। तो जो ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी आए तो तभी प्रभुपाद जी ने वहाँ पे विग्रहों का प्रस्थापना किया और उसके बाद में कई भक्तों को उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा दे दी और उन्हें कहा कि आप मेरे ग्रंथ पढ़ो और उससे समझो आप किस तरह से पूजा करनी है। तो वास्तव में उस समय कैसे विग्रहों की पूजा करनी है इसका विस्तारित रूप से प्रशिक्षण देने के लिए प्रभुपाद जी के समय नहीं था, सारे विश्व भर में प्रचार करना था। तो तभी प्रभुपाद जी ने क्या किया, जो विग्रहों को भी प्रार्थना की कि वो कह रहे थे भक्त भगवान से कह रहे भगवान मेरे पास समय नहीं है, वो कहते कि मुझे सारे विश्व भर में आपके ही संदेश का प्रचार करना है तो मैं यहाँ पे रह के प्रशिक्षण नहीं दे सकता आपको सारे भक्तों को, तो कृपया आप ही इन सब के हृदय में हो तो आप इन सबको मार्गदर्शन दे दो, और आप क्या मार्गदर्शन दो कि आपकी कैसे पूजा करनी है उसका मार्गदर्शन आप ही दे दो। तो ऐसी जो प्रार्थना है वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में किसी ने अभी तक नहीं की है। बहुत से महान भक्त है जिन्होंने बहुत ही निचले स्तर के भक्त है उनका उद्धार किया है, पर जो निचले स्तर के भक्त है उनको विग्रहों की पूजा में लगाना ये जो साहस है यह किसी ने नहीं किया है। तो प्रभुपाद जी ऐसा साहस क्यों किया, ये केवल ऐसे नहीं था कि प्रभुपाद जी के पास समय नहीं था, वो एक बात थी व्यवहारिक रूप से, पर आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभुपाद जी के हृदय में आत्मविश्वास था। विश्वास था, क्या विश्वास था कि मैं भगवान के आंदोलन को चला रहा हूँ और मैं भगवान के आंदोलन का प्रचार कर रहा हूँ और इस आंदोलन को बरकरार रखे, इस आंदोलन को फैलाने में भगवान स्वयं कार्यरत रहेंगे, तो इसलिए भगवान स्वयं इसमें मदद करेंगे। प्रभुपाद जी को पूछा गया था कि आपने सारे विश्व भर में 108 मंदिर बनाए, आपने कैसे सब लोगों को आकर्षित किया इस तरह से, हजारों हजारों लोग संख्या में, लाखों की संख्या में। प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया, प्रभुपाद जी बोले कृष्ण सर्वाकर्षक है, मैंने सिर्फ कृष्ण को प्रदर्शित किया, कृष्ण ने सबको आकर्षित कर लिया। तो यह प्रभुपाद जी एक तरह से नम्रता है पर यह दूसरी तरह से सत्य भी है कि प्रभुपाद जी का विश्वास था कि अगर मैं कृष्ण के बारे में बताऊंगा तो कृष्ण सबको आकर्षित कर लेंगे। तो यह प्रभुपाद जी ने किया और फिर क्या हुआ, एक साल के बाद प्रभुपाद जी वापस ऑस्ट्रेलिया में आए और उन्होंने देखा कि विग्रहों की पूजा बहुत सुंदर पद्धति से चल रही है। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि यस, भगवान कृष्ण ने आप सबको मार्गदर्शन किया है। तो प्रभुपाद जी ने जो विग्रहों की पूजा शुरू की, इस तरह से इतना आदर्श पद्धति से पूजा इस्कॉन में होती है, कुछ कुछ मंदिर में होती है, जो वृंदावन में कुछ ऐसे राधा रमण का मंदिर है, दूसरे कुछ मंदिर है वहाँ पे विग्रहों की जो पूजा है बहुत अच्छी तरह से होती है, पर जो अनेक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो बड़े विश्वव्यापी है तो उनमें कई कई संस्था में विग्रह है ही नहीं, और अगर विग्रह है तो विग्रहों की पूजा ज़्यादा नहीं होती है, विग्रहों को एक ड्रेस होता है, कभी कभी एक हफ्ते के लिए वही ड्रेस होता है और फिर ज्यादा कुछ सेवा नहीं होती है। पर जो प्रभुपाद जी ने जो विग्रह पूजा शुरू की वो इतनी सुंदर है कि अभी बहुत से जो अभी मायापुर में एक मायापुर एकेडमी है जहाँ पे सारे पुजारी को प्रशिक्षण देते हैं, तो वहां पे न केवल सारे इस्कॉन से विश्व भर से भक्त आते हैं पर दूसरे संस्थाओं से भी भक्त आते हैं, हमको भी पूजा विग्रहों की पूजा कैसे करनी है आप सिखाओ हमें। और जो जयपुर में मैं पिछले बार भी ये बताया था कि जयपुर में जो जयपुर से सब विग्रह बनाए जाते हैं, अनेक विग्रह बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो कई विग्रह बनाने वाले हैं वो अपना जो विग्रहों का जो दुकान या वर्कशॉप जो है उसमें क्या लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिखते हैं इस्कॉन के विग्रह यहाँ पे बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस्कॉन के विग्रह जो इतने सुंदर होते हैं कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो वास्तव में इस्कॉन के विग्रहों का सौंदर्य वो शिल्पक के कारण नहीं है, भक्तों की पूजा के कारण है। शिल्पक है जरूर, उसने शिल्प अच्छा किया होगा, पर भगवान का जो सौंदर्य है वह भगवान कब प्रकट करते हैं, जब उनकी सेवा होती है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेषता है कि उनको भगवान के इस उपदेश में श्रद्धा थी कि अगर कोई भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेगा प्रामाणिकता से तो भगवान उनको बुद्धि दे देंगे। कई बार जो होता है कि अगर कोई दसवीं का या बारहवीं का रिजल्ट आता है तो कई ट्यूशन क्लासेस होते हैं, बताते हैं कि हमारे ट्यूशन क्लासेस में से इतने लोग मेरिट में आ गए हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, तो वो क्या दिखाते हैं उस तरह से कि हम कितने अच्छे हैं, आप भी हमारे पास आ जाओ, अभी बाकी सब विद्यार्थी को बता रहे हैं। तो पर बहुत बार जो ऐसे जो ट्यूशन क्लासेस होते हैं वो उनके ही विद्यार्थी तो टॉप में क्यों आते हैं, क्योंकि वो पहले से टॉप विद्यार्थियों को ही लेते हैं। उनका जो कट ऑफ होता है ना कि आपको अगर आपका हमारे दसवीं के ट्यूशन में आना है तो आपको नौवीं में इतने इतने मार्क्स मिलने चाहिए, तो क्या होता है बुद्धिमान विद्यार्थी पहले से आ रहे हैं, फिर बुद्धिमान विद्यार्थी अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर ऐसा कोई ट्यूशन क्लासेस है जो कहते हैं कि जो आठवीं नौवीं में बहुत कम मार्क्स मिले उनको लेके आओ और हम आपको टॉपर बना देंगे, तो वह करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी जो है वो ऐसे शिक्षक है, वो सारे विश्व भर से ऐसे प्रकार के लोग थे, उनको भक्ति के बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर प्रभुपाद जी ने पहली बार जब न्यूयॉर्क में मंदिर बनाया था तो अलग अलग प्रकार के चित्र थे, तो वहां पे चित्र थे, एक भक्त ने देखा वहां पे हनुमान जी का चित्र था, तो वो एक भक्त ने पूछा स्वामी जी ये किस प्रकार की बिल्ली है। तो हनुमान जी भारत में छोटे छोटे बालक को भी पता है हनुमान जी कौन है, पर यहाँ पे वो भक्त जो थे उनको हनुमान जी को बिल्ली बांध रहे थे, तो वो हनुमान जी को बिल्ली बांध रहे थे पर उनको प्रभुपाद जी के आदेशों में श्रद्धा थी, अतूट श्रद्धा थी, और उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण भगवान ने उनको बुद्धि दे दी, और भगवान ने बुद्धि दे दी और सारे और वह शुद्ध हो गए, और शुद्ध होकर विश्व भर में भी सुंदर मंदिर है, सुंदर प्रचार हो रहा है। तो जो श्लोक है हम में से हमें कभी कभी लगता हुआ कि मैं बहुत दूषित हूँ, मेरा मन बहुत परेशान करता है, पर जो भारत में जन्म लेके भारतीय संस्कृति में रहा है उनके कभी इतनी सांस्कृतिक अधोगति नहीं हो सकती जितने पाश्चात्य देशों में होती है। पर पाश्चात्य देशों में जो थे उनके भी सारे जो कलवश थे वह सब भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान सबके हृदय में, तो हमारे हृदय में भी भगवान है, और अगर हम भगवान की प्रामाणिकता से भक्ति करना चाहते हैं, करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो भगवान अहम अज्ञान जमतमा नाशयामि, मैं सारे अनर्थों को नाश कर दूंगा, और फिर हम भक्ति में तेजी से और दृढ़ता से प्रगति करते हुए भगवत धाम लौट जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गीता जयंती महामहोत्सव की, ताय गौर प्रेमानंदे, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा।